بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متر، زہرہ زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتاؤں، آج قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت کرمانگ 14 اور 15 کی تلاوت کر کے آج کے کارکرم کی شوبھا بڑھائی ہے قاری قاسم رضی نے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، لوگوں کے لیے پتنیوں، سنتانوں، سونے چاندی سے بٹورے ہوئے دھن، اچھے گھوڑوں، مویشیوں تتھا کھیتیوں سے پریم کو اچھا دکھایا گیا ہے۔ ये सब सांसारिक जीवन की नश्वर वस्तुएं हैं और अल्लाह के पास अच्छा प्रतिफल है। हे पैगंबर, कह दीजिए कि मैं तुम्हें इससे अच्छी वस्तुओं की खबर देता हूँ। जो लोग अल्लाह से डरते हैं उनके लिए अल्लाह के पास ऐसे बाग हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं और वहाँ वे सदैव रहेंगे। उनकी पत्नियाँ होंगी और अल्लाह की प्रसन्नता होगी और अल्लाह अपने बंदों को देखने वाला है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारे ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। आज रविवार है, आबान की 15, रबीउल सानी की 11 और नवंबर की 6 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद अनमोल बातें और उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे राजनीतिक चर्चा। राजनीतिक चर्चा के बाद आप सुनेंगे कुरान ईश्वर चमत्कार और अंतिम कार्यक्रम होगा आज कल। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए, पता है parstoday.com/hi। अब आप सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दुनिया में ईरान नहीं बल्कि अमेरिका अलग थलग पड़ गया है। ईरान के शीर्ष नेताओं की संयुक्त बैठक में दुश्मनों से मुकाबले पर जोर दिया गया है। लेबनान से लगने वाली सीमा पर इसराइली सेना ने युद्ध अभ्यास शुरू किया है। नुसरा फ्रंट के आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप पर रूसी और सीरियाई लड़ाकू विमानों ने बमबारी की है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अरिया फार्मूला मीटिंग की नाकामी के बाद अमरीका पहले से भी ज्यादा अलग थलग पड़ गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में ईरान को अलग थलग करने के अमेरिका के प्रयास बुरी तरह से विफल हो गए हैं। कनानी का कहना था कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जाने जाने वाले और सबसे कुख्यात आतंकवादी समूहों का समर्थन करने वाले न्यूयॉर्क में ईरान विरोधी आर्या फार्मूला मीटिंग में गलत एजेंडे के साथ इकट्ठा हुए ताकि वे ईरान को अलग थलग कर सकें। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि मीटिंग के आयोजकों ने मीडिया तानाशाही के माध्यम से वेनेजुएला समेत ईरान विरोधी प्रतिबंधों का विरोध करने वाले 19 देशों के प्रतिनिधियों को वहां भाषण देने की अनुमति नहीं दी। इसके बजाय अमेरिका ने ईरान मूल की दो बदनाम महिलाओं को मंच दिया जिन्होंने ईरान विरोधी प्रतिबंधों का समर्थन किया था। कनानी का कहना था कि न्यूयॉर्क में बाइडेन प्रशासन नाकाम हो गया क्योंकि एक सप्ताह से भी कम समय में 19 देशों के प्रतिनिधियों ने ईरान की राजधानी तेहरान में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की रक्षा के लिए आयोजित हुई बैठक में भाग लिया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पूछा, अब दुनिया को बताना चाहिए कि दुनिया में कौन अलग थलग पड़ गया है।
ईरान ईरान की विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के प्रमुखों की एक संयुक्त बैठक में दुश्मनों से मुकाबले के रास्तों और देश के आर्थिक मामलों को लेकर चर्चा हुई। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी, विधायिका प्रमुख मोहम्मद बाकिर गालिबॉफ और न्यायपालिका के प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिनी एजेई ने देश की हालिया स्थिति को लेकर एक संयुक्त बैठक की। देश के प्रमुख अधिकारियों ने इस बैठक में ईरानी राष्ट्र के दुश्मनों की धमकियों और साजिशों के खिलाफ और अधिक सतर्क रहने, साथ ही दंगाइयों, उपद्रवियों और अलगावादियों की नापाक और विभाजनकारी षड्यंत्रों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में तीनों अधिकारियों ने 4 नवंबर को वैश्विक साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर ईरानी जनता द्वारा किए गए विशाल और भव्य प्रदर्शन और रैलियों की सराहना की।
IRGC की एयरोस्पेस फोर्स ने शनिवार को कायम 100 सैटेलाइट कैरियर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ईरान ने अंतरिक्ष में अपने विकास रथ की उड़ान को जारी रखते हुए एक और छलांग लगाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार IRGC की एयरोस्पेस फोर्स ने ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादे की मौजूदगी में शनिवार को कायम 100 सैटेलाइट कैरियर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कायम 100 सैटेलाइट कैरियर 3 चरणों वाला ठोस ईंधन वाहक है। इसके पहले चरण की टेस्टिंग 4 नवंबर को कामयाबी के साथ पूरी हो गई। ईरान की अपनी तकनीक से बना ये सैटेलाइट कैरियर 80 किलोग्राम तक के उपग्रहों को पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। IRGC एयरोस्पेस फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादे ने कहा कि निकट भविष्य में नाहिद सैटेलाइट को इस कैरियर के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।
अमरीका और कुछ यूरोपीय देशों के कड़े से कड़े प्रतिबंधों के बावजूद ईरान तेजी से प्रगति की ओर अपने कदम बढ़ाता जा रहा है। इस बीच एविएशन क्षेत्र में ईरान ने नया धमाका किया है। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार की सुबह इस्लामी गणराज्य ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा अश्तियानी, एयर डिफेंस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली रजा सबाही और रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों की मौजूदगी में सयाद 4B मिसाइल को लॉन्च किया गया और साथ ही इस मिसाइल की प्रोडक्शन लाइन का भी अनावरण कर दिया गया है। बावर 373 उन्नत प्रणाली के जरिए लंबी दूरी तक मार करने वाले सयाद 4B मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में बावर 373 सिस्टम के अनुकूलित रडार द्वारा 450 किलोमीटर से अधिक दूरी पर एक स्थिर राउंड लक्ष्य का पता लगाया गया था और इसे लगभग 405 किलोमीटर की दूरी तक ट्रैक किया गया और फिर निशाना बनाया गया और पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। सयाद 4B लंबी दूरी की मिसाइल में ठोस ईंधन है और पहली बार इसका पूरी तरह से परीक्षण किया गया है। बावर 373 सिस्टम की डिटेक्शन रडार रेंज 350 से बढ़कर 450 किलोमीटर और सिस्टम की एंगेजमेंट रडार रेंज 260 से बढ़कर 400 किलोमीटर हो गई है। गौरतलब है कि शनिवार को सिपाही पासदाना ने इंकलाब IRGC के एयरोस्पेस डिपार्टमेंट ने काई 100 नामक एक ठोस ईंधन सैटेलाइट कैरियर का उपकक्षीय परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया था। ईरान की अपनी तकनीक से बना यह सैटेलाइट कैरियर 80 किलोग्राम तक के उपग्रहों को पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है।
समाचार सूत्रों का कहना है कि ज़ायोनी सेना ने लेबनान से लगने वाली सीमा पर युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। रविवार को अल जजीरा TV की प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान से लगने वाले अवैध अधिकृत सीमावर्ती इलाकों में इसराइली सेना ने युद्ध अभ्यास शुरू किया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल इस अभ्यास के लक्ष्य और अवधि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। इसराइली सेना ने 20 दिन पहले भी लेबनान से लगने वाले अवैध अधिकृत फिलिस्तीनी इलाकों में एक युद्ध अभ्यास किया था जो एक हफ्ते तक जारी रहा। ज़ायोनी सेना का कहना है कि युद्ध अभ्यास के दौरान लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी जाएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इसराइली सेना द्वारा एक के बाद दूसरे युद्ध अभ्यास के आयोजन से जाहिर होता है कि ज़ायोनी शासन कितना डरा हुआ और भयभीत है।
इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने वाले फारस खाड़ी के अरब देश बहरीन ने कहा है कि वो पूर्व ज़ायोनी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता में वापसी के बाद इसराइल के साथ अपनी साझेदारी को अधिक मजबूत बनाएगा। बहरीन के किंग के कूटनीतिक सलाहकार शेख खालिद बिन अहमद अल खलीफा ने शनिवार को कहा, हमने अब्राहम संधि के तहत इसराइल के साथ एक समझौता किया है जिस पर हम डटे रहेंगे और अपनी साझेदारी को अधिक बढ़ाएंगे। शेख खालिद का कहना था कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमें क्षेत्र में एक दिन के लिए भी सुरक्षा को लेकर चुनौती का सामना नहीं करना पड़े। 1 नवंबर को इसराइल में हुए आम चुनाव में नेतन्याहू के गठबंधन की जीत हुई थी। ये पिछले 4 वर्षों में इसराइल में 5वां आम चुनाव था, जिसके बाद पिछले चार साल से जारी राजनीतिक गतिरोध खत्म हुआ है। 2020 में नेतन्याहू शासन के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में इसराइल और बहरीन ने संबंधों के सामान्य बनाने का समझौता किया था। बहरीन के मुख्य विपक्षी दल अल विफाक और वरिष्ठ धर्मगुरु शेख ईसा कासिम ने जानी शासन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए आले खलीफा शासन की कड़ी निंदा की थी।
रूसी और सीरियाई वायुसेना ने उत्तरी सीरिया के इदलिब प्रांत के पश्चिम में आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। पहले ही सीरियाई सेना और इस्लामी प्रतिरोधी बलों द्वारा इस देश में दाइश आतंकवादी समूह नुसरा फ्रंट और अन्य आतंकवादी गुटों की पराजय हो चुकी है, लेकिन बचे खुचे तत्व आज भी तुर्की के समर्थन से सीरिया में आतंकवादी कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं और देश के एक भाग पर इन गुटों ने कब्जा कर रखा है। रविवार को अलमयादीन टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इदलिब शहर के पश्चिम में नुसरा फ्रंट के आतंकवादियों के ठिकानों पर रूसी और सीरियाई लड़ाकू विमानों ने बमबारी की। रिपोर्ट के मुताबिक जिस समय आतंकवादी सड़कों पर लड़ने की ट्रेनिंग ले रहे थे, ठीक उसी समय रूसी और सीरियाई लड़ाकू विमानों ने उन्हें निशाना बनाया। अलमयादीन टीवी का कहना है कि इस सैन्य ऑपरेशन में मरने वाले आतंकवादियों की सही संख्या के बारे में अभी विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। हालिया दिनों में तुर्की की सीमा से लगने वाले इलाकों में आतंकवादियों की गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिली है।
सऊदी अरब के हाले सऊद शासन ने अपने देश की जनता के खिलाफ दमनकारी कार्रवाइयों को जारी रखते हुए अब अत्याचार के हद ही पार कर दी है। 13 वर्षीय अब्दुल्ला अल हुवैती नामक बच्चे को मौत की सजा सुनाई है। समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक ताइफ शहर में सऊदी अरब की सरकारी अदालत की ओर से एक 13 वर्षीय बच्चे को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाना शुरू हो गई है। कई सामाजिक कार्यकर्ता सामने आए हैं और खुलकर आले सऊद शासन का विरोध कर रहे हैं। इस बीच एक कार्यकर्ता का कहना है कि इस दमनकारी और पार्श्विक कार्रवाइयों के कारण आले सऊद शासन का पतन और विनाश निकट है। इस बीच दुनिया के बड़े बड़े मानवाधिकार की रक्षा का दावा करने वाले देशों और संगठनों की चुप्पी के बीच कुछ संगठन सामने आए हैं और उन्होंने सऊदी अरब की अत्याचारी सरकार से मांग की है कि वो इस मौत की सजा को रोके, लेकिन अभी तक बच्चे की मौत की सजा को रोके जाने को लेकर कई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं जिन देशों और शक्तियों के समर्थन की वजह से आज सऊदी अरब दुनिया के हर जुल्म को अंजाम देने के बाद भी अपराधी नहीं माना जाता है, अमेरिका और यूरोपीय देश, उन्होंने भी इस मासूम बच्चे की फांसी की सजा पर अभी तक जबान नहीं खोली है।
सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि तकफीरी आतंकवादी गुट दाइश का सरगना इराक के नैनावा प्रांत में अपने कई आतंकवादी साथियों के साथ मारा गया है। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के मुताबिक इराक के गृह मंत्री की देखरेख में नैनावा प्रांत के पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों ने गुप्त सूचना प्राप्त करने के बाद कार्रवाई की, जिसके परिणाम स्वरूप तकफीरी आतंकवादी गुट दाइश का सरगना मारा गया। साथ ही इस ऑपरेशन में दाइश के 2 अन्य आतंकवादी भी मारे गए हैं। मारा गया दाइश का सरगना इराक के बादूश इलाके का कमांडर था। आतंकवादियों के पास से आत्मघाती जैकेट और आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। अनमोल बातें।
दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल बातें लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज हम सुप्रीम लीडर की नजर में इस्लाम में महिलाओं के स्थान और उनके महत्व पर चर्चा करेंगे। अख्तर रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्ज़मा सैयद अली खामेनाई का मानना है कि इस्लाम में महिलाओं का महत्व बहुत ज्यादा है और इस्लाम धर्म ने महिला को परिवार का केंद्र और सेंटर तथा परिवार के सुख व शांति का कारण बताया है। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि इस्लाम धर्म में या इस्लामी तर्क में या इस्लामी शिक्षाओं में महिला एक आदर्श है। महिलाओं के लिए एक परिप्रेक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। ये परिप्रेक्ष्य एक संपूर्ण परिप्रेक्ष्य है, यानी इस्लामी महिला उसे कहा जाता है जिसमें ईमान हो, जिसमें पवित्रता हो और पाकदामनी हो, इंसान के प्रशिक्षण की बड़ी जिम्मेदारी हो, समाज में उसका प्रभाव हो, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विकास से संपन्न हो। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह उज़्ज़मा सैयद अली खामेनाई का कहना है कि इस्लामी महिला उसे कहा जाता है जो परिवार और घराने की बेहतरीन प्रबंधक हो, पुरुष की शांति और उसके चयन का कारण हो। ये सब के सब महिलाओं की विशेषताएं हैं। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि इसके साथ ही उसमें नरमी भी हो, कोमलता हो, हृदय की कोमलता पाई जाती हो, ईश्वरीय रोशनी प्राप्त करने की तत्परता हो, ये सब मुस्लिम महिलाओं का आदर्श है। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्ज़मा सैयद अली खामेनाई कहते हैं कि यही वो विशेषताएं हैं जिन्हें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा या हजरत खदीजा की प्रशंसा करते हुए अनेक अवसरों पर पूरी तरह से महिलाओं के बारे में बयान किए हैं। ये इस्लामी आदर्श और मॉडल हैं। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि इसके मुकाबले में या इसके विपरीत एक पदभ्रष्ट आदर्श भी पाया जाता है जो अलग अलग समय में भिन्न भिन्न रहा है। आज वो पदभ्रष्ट मॉडल पश्चिमी महिलाओं का आदर्श व मॉडल है। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्ज़मा सैयद अली खामेनाई कहते हैं कि इस काल में जिसमें हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो सारी विशेषताएं और अच्छाइयां जो हमने इस्लामी महिलाओं में देखी हैं, आज की ज्यादातर पश्चिमी महिलाओं की विशेषताएं व अच्छाइयां ये हैं कि वो पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं और पुरुषों के आनंद और मजे का कारण बन सकती हैं। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि इसीलिए आप देख रहे हैं कि पश्चिमी महिलाओं का मापदंड आज नग्नपन में बदल चुका है। आधिकारिक कार्यक्रमों में जिसमें महिलाएं और पुरुष एक साथ भाग लेते हैं, पुरुषों को पूरा वस्त्र पहनना होता है और महिलाएं जितना संभव हो नग्नता की ओर जाएं तो बेहतर है। ये बात आधिकारिक कार्यक्रमों की है। अब सामाजिक वातावरण की बात तो और भी स्पष्ट और उजागर है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिज़वी आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं भारत नियंत्रित कश्मीर के अलगाववादियों पर केंद्र सरकार का शिकंजा, अमेरिका के बूढ़े राष्ट्रपति की बेतुकी बातें और जापान तथा अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो सबसे पहले भारत नियंत्रित कश्मीर के अलगाववादी नेताओं पर केंद्र सरकार का शिकंजा। भारत नियंत्रित कश्मीर में अलगाववादी नेताओं के घरों पर केंद्र सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है, जिससे अलगाववादी नेताओं में काफी रोष पाया जाता है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से हमारे साथी सिप्ते मोहम्मद हसन।
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अलगाववादियों के विरुद्ध अपनी कार्रवाइयों में तेजी लाई है। उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले ही शबीर अहमद शाह, जो इस वक्त जेल में बंद हैं, के मकान को अटैच कर दिया गया है और अब सईद अली शाह गिलानी, जो दो वर्ष पहले इस दुनिया से चले गए थे, उनके मकान को भी अटैच करने के आदेश दिए गए हैं। बताया जाता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है कि जो प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है, क्योंकि ये पैसा अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आ रहा है और उसके पुख्ता सबूत उनके पास है। टेरर फंडिंग केस के आरोप में दो मकानों को अटैच करने के आदेश पहले ही दिए गए हैं। सईद अली शाह गिलानी अगरचे दुनिया में नहीं है, परंतु उनके निवास में उनके पुत्र जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब उनके मकान को भी अटैच करने के जो आदेश आए हैं, उस पर मिली जुली प्रक्रिया सामने आई है। शबीर शाह की बेटी ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि हमें इस हवाले से कोई आदेश नहीं मिले हैं और हमने जो सूचना प्राप्त की, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज चैनलों के द्वारा उन्हें पता चला कि उनके निवास को अटैच किया जा रहा है।
एक्चुअली यहाँ हमारे हेल्पर हैं, ही इज विद हिज फैमिली हियर, सो उन्हीं से हम बोलने आए थे कि इफ दे हैव टू टेक आउट देयर थिंग्स आउट, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या होगा, इसीलिए अदरवाइज वी हैव जस्ट, हमें खुद मीडिया से पता चला, वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस। हमारे पास कोई नोटिस नहीं आई अभी तक, नो नो, वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी नोटिस, नो नथिंग।
यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि ईडी ने पहले ही आतंकवाद और अलगाववाद के विरुद्ध कहा है कि वो इन गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो यहाँ अलगाववाद और आतंकवाद को फैलाने का प्रयास करेगा, उसके विरुद्ध में वो सख्ती से निपटेंगे। इधर जम्मू कश्मीर में अलगाववादी गुटों के विरुद्ध जहाँ शिकंजा सख्त कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ मेनस्ट्रीम दलों ने भी आरोप लगाया है कि उन्हें भी अपनी गतिविधियां राजनीतिक तौर अंजाम देने की अनुमति नहीं है। गुपकार एलायंस ने एक बार फिर ये कहा है कि कश्मीर के हवाले से जो नीतियां उनके अनुसार नई दिल्ली ने अपनाई है, उसके अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
और अब रुख करते हैं अमेरिका का।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बूढ़े हो गए हैं और जब से वो सत्ता में आए हैं, बल्कि सत्ता से पहले चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने कई ऐसी बातें की हैं जिसकी वजह से वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। न्यूयॉर्क से IRIB के लिए अली रजबी की रिपोर्ट, साथी रविश जैदी की जबानी।
शायद आपने भी अमरीका के 80 वर्षीय राष्ट्रपति के इस तरह के भाषणों को जरूर देखा और सुना होगा कि जिसमें वे या तो अपने व्यवहार से या फिर अपनी जबान से कोई ना कोई गलती करते हुए دکھائی دے رہے ہیں.
انفلیشن از اے ورلڈ وائڈ پرابلم.
جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ عراق یدھ امریکہ میں ویشوک مہنگائی کی مکھ وجہ ہے. امریکی راشٹرپتی کے ان شبدوں کو ترنت ہی صحیح کیا گیا اور کہا گیا کہ کیونکہ ان کے دماغ میں کچھ اور تھا اس لیے غلطی سے یہ شبد نکل گیا. وہیں جانکاروں کا کہنا ہے کہ شاید انہوں نے اس بار غلطی نہیں کی ہے اور اپنے دیش اور دنیا میں موجود مہنگائی کی اصل وجہ کو صحیح بتایا ہے. وہی بات جو نوبل پرسکار وجیتا امریکی ارتھ شاستری جوزف اسٹریگلٹس نے لگ بھگ 14 سال پہلے عراق پر امریکہ دوارا جلبازی میں کیے گئے حملے پر چیتاونی دی تھی اور کہا تھا. جوزف کہتے ہیں کہ اب تک عراق پر حملے کی قیمت $1 ٹریلین رہی ہے اور اگر یہ جاری رہی تو یہ اور بھی بڑھ جائے گی. یدھ میں لگنے والی یہ بھاری لاگت اور قیمت امریکہ اور یہاں تک کی دنیا میں آرتھک سنکٹ کو جنم دے گی. وہیں آج 2022 کے انت میں امریکہ ابھوتپور مدرا اسفیتی سے نپٹ رہا ہے. جو نشچت روپ سے اس کے کارکوں میں سے ایک یہ ہے کہ بائیڈن کے پچھلے سمکشوں نے یدھ میں زیادہ دلچسپی دکھائی اور ہر یدھ کا گرم جوشی سے سواگت کیا. آدھیکارک آنکڑے بتاتے ہیں کہ سنیکت راج امریکہ میں مدرا اسفیتی کی ورتمان در اس دیش کے پچھلے 40 ورشوں میں ابھوتپور ہے اور اس دیش کے لوگ اس سمے اپنے جیون میں بڑھتی مہنگائی اور آرتھک دباؤ کو اچھی طرح محسوس کر رہے ہیں. ایک عام امریکی ناگرک کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے اب اپنی حد پار کر دی ہے, ہر چیز کے دام آسمان چھو رہے ہیں. اس بیچ جب امریکہ میں منگلوار کو مدھیاودھی چناؤ ہونے جا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں پرتینیدھی سبھا کے سبھی 435 سدسیوں, 100 سدسیہ سینٹ کے 35 سدسیوں اور کچھ راج کے ادھیکاریوں کا چین کیا جائے گا, چناوی سرویکشن بائیڈن کے پکش میں جاتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. نوینتم سرویکشن میں 43% امریکیوں نے کہا ہے کہ بائیڈن کے پدبھار سنبھالنے کے بعد سے ان کی وتیہ استھتی خراب ہو گئی ہے. بتا دیں کہ حال کے مہینوں میں جو بائیڈن نے جہاں امریکی سماج میں راشٹرپتی کی لوک پریتا میں کمی کے نئے ریکارڈ کو انوبھو کیا ہے, وہیں ان کے سمے کی موجودہ مہنگائی در امریکہ کے پچھلے 40 سالوں میں سب سے زیادہ ہے. کل ملا کر یہ آنکڑے ڈیموکریٹس کے لیے ڈراؤنے سپنے جیسا ہوتا جا رہا ہے اور مدھیاودھی چناؤ میں ان کی جیت کی سمبھاوناؤں کو کم کرتا جا رہا ہے. نیو یارک سے IRIB کے سمواددات علی رجبی کی رپورٹ.
اور اب چلتے ہیں امریکہ اور جاپان کے وشے کی اور. امریکہ اور جاپان کی نو سینا نے سنیکت سینیہ ابھیاس کیا ہے. ایک سمیکشا پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی قائم رضوی.
امریکہ اور جاپان کی نو سینا نے ایک سنیکت سینیہ ابھیاس آرمبھ کیا ہے. جاپان کے رکشا منترالے کے انوسار دکشنی جاپان کے کیوشو دویپ پر جاپان اور امریکہ کا سنیکت سینیہ ابھیاس آرمبھ ہوا ہے. یہ شیتر چین کے نکٹ ہے. اسی بیچ یونہاپ سماچار ایجنسی نے دکشنی کوریا کے سوتروں کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ اتری کوریا نے شنیوار کو کم دوری کی مارک شمتا والے 4 میزائل داغے تھے. پورو ایشیا میں اپنے گھٹک دیشوں کے ساتھ سنیکت سینیہ ابھیاس کرنا امریکہ کی ایک ایسی رننیتی ہے جس سے سدیو ہی شیتر میں تناؤ پیدا ہوتا رہتا ہے. حالیہ کچھ ورشوں کے دوران امریکہ, جاپان اور دکشنی کوریا کے سنیکت سینیہ ابھیاسوں پر اتری کوریا اور چین کی اور سے کڑی پرتکریائیں آتی رہی ہیں. یہ دیش ان کاموں کو امریکہ کی اکساوے والی کاروائیوں کے روپ میں دیکھتے ہیں. اس بات کو گمبھیرتا کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس پرکار کے سنیکت سینیہ ابھیاسوں سے امریکہ کا مکھیہ ادیش چین اور اتری کوریا کے ورودھ منوویگیانک دباؤ ڈالنے کے لیے ماحول تیار کرنا ہے. جاپان کی سرکار دوارا اتری کوریا کے میزائل پریکشنوں کی نندا یہ بتاتی ہے کہ شیتر کے لیے امریکہ ایک ایسی نیتی پر کام کر رہا ہے جس میں ایک اور وہ اور اس کے گھٹک دیش ہیں جبکہ دوسری اور اتری کوریا اور چین ہیں. کوریا پرایا دویپ کے بارے میں امریکہ کی اسی نیتی کے کارن उत्तरी कोरिया ने अपनी रक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से मिसाइलों के परीक्षणों को अपनी कार्य सूची में शामिल कर रखा है। प्योंगयांग का कहना है कि वो इस काम को उसी हालत में बंद करेगा जब अमरीका क्षेत्र में उकसावे वाली कार्रवाइयां करना बंद कर देगा। हालांकि अमरीका ने उत्तरी कोरिया के विरुद्ध दबाव बनाने के लिए ही ये सैन्य अभ्यास आरंभ किया। अमरीका चाहता है कि अपने घटकों पर दबाव डालते हुए क्षेत्र में इस प्रकार के सैन्य अभ्यास किए जाएं, जिनसे उसके दुश्मन अर्थात उत्तरी कोरिया और चीन भयभीत हो जाएं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक जानकार जेफरी पीटर कहते हैं कि अमरीका ने इस समय उत्तर कोरिया के विरुद्ध एक मोर्चा खोल रखा है जिसको वो विभिन्न मोर्चों पर प्रयोग कर रहा है। ऐसा लगता है कि पूर्वी एशिया में अमेरिका की उकसावे वाली कार्रवाइयां जहां पर एक ओर क्षेत्रीय देशों के संबंधों में तनाव का कारण बनेंगी, वहीं पर ये लोगों के बीच व्हाइट हाउस की नीतियों के प्रति घृणा का कारण भी बनेंगी।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम कुरान ईश्वर चमत्कार।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। आइए पहले सूरह अंबिया की 34वीं और 35वीं आयतों की तिलावत सुने।
أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ।
और हे पैगंबर, हमने आपसे पहले भी किसी मनुष्य के लिए अमर जीवन नहीं रखा, तो क्या यदि आप मर गए तो वे सदैव रहने वाले हैं? हर जीव मृत्यु का स्वाद चखने वाला है, और हम बुराई और अच्छाई के माध्यम से तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, और अंततः तुम्हें लौटकर हमारी ही ओर आना है।
इससे पहले बताया गया कि इस सूरे की आयतें ईश्वर और उसके पैगंबरों के बारे में अनेक ईश्वरवादियों के निराधार संदेहों और अनुचित अपेक्षाओं का उत्तर देती हैं। अनेक ईश्वरवादियों की एक आशा ये थी कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शीघ्र ही देहांत हो जाएगा और फिर कोई उनकी मूर्तियों और हाथों के बनाए हुए देवताओं के बारे में कुछ नहीं कहेगा, और परिणाम स्वरूप उन्हें पैगंबर से मुक्ति मिल जाएगी।
ये आयतें उनके उत्तर में कहती हैं कि ये मत सोचो कि पैगंबर चले जाएंगे और तुम लोग रह जाओगे। ईश्वर के पैगंबरों सहित सभी लोगों को मरना है, और कोई भी इस नश्वर संसार में सदा बाकी रहने वाला नहीं है। इसी प्रकार तुम ये भी मत सोचो कि उनके चले जाने से उनका धन भी मिट जाएगा। जैसा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस संसार से चले गए, किंतु उनके द्वारा आरंभ किया गया हज का संस्कार हजारों वर्ष के भी बाद बाकी है, और तुम अनेकेश्वरवादी भी कुछ अंधविश्वासों के साथ ही सही ये संस्कार अंजाम देते हो।
इस आधार पर सांसारिक जीवन सभी मनुष्यों के लिए सीमित है, और इस बीच वास्तविक विजय उसी को प्राप्त होती है जो जीवन के उतार चढ़ाव और कटु व मधुर घटनाओं से जो लोगों की परीक्षा का साधन है सफलतापूर्वक बाहर निकल आए, क्योंकि सभी को ईश्वर की ओर लौटना है जहां उन्हें अपने कर्मों का फल देखने को मिलेगा।
इन आयतों से हमने सीखा कि ईश्वर की एक परंपरा जन्म से मृत्यु के बीच मनुष्य के जीवन को सीमित रखना है।
जीवन की कटु घटनाएं और दरिद्रता भी परीक्षा का साधन है और मधुर घटनाएं एवं धन संपन्नता भी परीक्षा का माध्यम है। दरिद्र व धन संपन्न तथा दुर्बल व मजबूत हर व्यक्ति की परीक्षा होती है।
मृत्यु मनुष्य के जीवन का अंत नहीं है, बल्कि ये एक अन्य संसार में प्रवेश का चरण है जिसमें हमें ईश्वर के समक्ष उपस्थित होना है।
آئیے اب سورہ انبیاء کی 36ویں آیت کی تلاوت سنیں۔
وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔
اور ہے پیغمبر، جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا پریہاس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا یہی وہ ویکتی ہے جو تمہارے پوجیوں کی برائی کے ساتھ چرچا کرتا ہے، جبکہ سوئم وے دیاوان ایشور کی یاد سے انکار کرتے ہیں۔
یہ آیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمبندھ میں انیک ایشوروادیوں کے ویوہار کی اور سنکیت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ان کا کام کیول پیغمبر اور ان کے کتھنوں کا مذاق اڑانا ہے، کیونکہ ان کے پاس اپنے انیک ایشورواد اور مورتی پوجا کے لیے کوئی بودھک ترک نہیں ہے۔ انہیں اس بات سے چڑ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مورتیوں کو ویویکہین کہتے ہیں اور اپاسنا یوگیہ نہیں سمجھتے، تتھا اس سمبندھ میں لوگوں کا مارگ درشن کرتے رہتے ہیں۔
آگے چل کر آیت کہتی ہے کہ انیکیشوروادی ایشور کے پیغمبر کا تو انکار کرتے ہیں، کنتو اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان کے پالنہار نے اپنی دیا و کرپا سے انہیں جو انوکمپائیں پردان کی ہیں انہیں یاد کر کے ایشور کے پرتی آبھار پرکٹ کریں اور اس کی اپاسنا کریں۔
اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ پیغمبروں کے ورودھیوں کا ترک پریہاس و اپہاس کے اترکت کچھ نہیں ہے، تتھا ان کے دعووں کا کوئی ویگیانک ایوم ترک سنگت آدھار نہیں ہوتا۔
کافروں کے نکٹ مہان ایشور کے انکار میں کوئی برائی نہیں ہے، کنتو پتھر و لکڑی کی بنی پرتیماؤں کا انادر ان کے لیے سہنیے نہیں ہے۔
آئیے اب سورہ انبیاء کی 37ویں آیت کی تلاوت سنیں۔
خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔
منشی اتاولے پن سے پیدا کیا گیا ہے، میں تمہیں شیگر ہی اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تو اس کے لیے جلد بازی نہ کرو۔
یہ آیت کاریوں میں جلد بازی کرنے سمبندھی منشی کی ایک وشیشتا کی اور سنکیت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ منشی اتنا اتاولا ہے کہ مانو اسے اتاولے پن میں ہی پیدا کیا گیا ہے اور اس کا آدھار ہی جلد بازی پر رکھا گیا ہے۔ نشچت روپ سے بھلے کرموں میں جلد بازی اچھی بات ہے، کنتو برے کارے اور پاپ کرنے میں اتاولے پن کا کیا کارن ہو سکتا ہے؟
جب کافروں سے کہا جاتا تھا کہ پاپ نہ کرو انیتھا ایشور یہ دنڈ تمہیں آ لے گا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ دنڈ جلدی کیوں نہیں آ جاتا۔ ایشور کہتا ہے کہ یدی انہیں دنڈ میں گرست ہونے میں جلدی ہے تو ہمیں دنڈ بھیجنے میں کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل کر کہیں جانے والے نہیں ہیں اور انتتہ انہیں دنڈ کی نشانیاں دیکھنی ہی ہوں گی۔
اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ کسی بھی کاری میں جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، سوائے یہ کہ اس کے لیے کوئی بودھک یا دھارمک ترک پایا جاتا ہو۔
جلد بازی کو بھی انیہ باتوں کی بھانتی نینترت کیا جا سکتا ہے، اور یہی کارن ہے کہ ایشور آدیش دیتا ہے کہ اکارن اتاولا پن نہ دکھاؤ۔
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम आजकल।
आज कल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में हम ये बताएंगे कि पर्दे को लेकर पश्चिम में किस तरह से दुष्प्रचार करके ईरान के विरुद्ध माहौल बनाया जा रहा है। स्वाति और सैयद में साम का सलाम स्वीकार कीजिए।
पश्चिमी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरानी समाज में महिलाओं को मनोरंजन के साधन के रूप में नहीं देखा जाता। इस समाज में महिला को ईश्वर की ऐसी देन के रूप में देखा जाता है जिसे माँ जैसा अनमोल एवं महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। निसंदेह महिला ईश्वर द्वारा बनाई गई कृति है जो समाज में मूल्यवान भूमिका निभाती है। माता के रूप में महिला को सम्मान प्राप्त रहा है।
इस्लामी शिक्षाओं के हिसाब से पुरुषों की ही भांति महिलाएं भी मानवीय विशेषताओं से संपन्न हैं। मानवीय विशेषताओं की दृष्टि से महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि शारीरिक दृष्टि से महिलाओं पुरुषों के बीच अंतर पाया जाता है जिसको ईश्वर ने पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया है। महिला और पुरुष में से कोई भी अकेले नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकता, जबकि दोनों मिलकर इस काम को आसानी से कर सकते हैं।
कुरान ने महिला और पुरुष के बीच पाए जाने वाले शारीरिक मतभेद का कारण बताते हुए कहा है कि ये नस्ल को आगे बढ़ाने और सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए है। कुरान के अनुसार महिला और पुरुष में जो भी ईश्वर से अधिक डरता है वही उसके निकट सम्माननीय है। हालांकि महिलाओं के बारे में पश्चिम में जो सोच पाई जाती है वो इस्लाम से बिल्कुल अलग और उसके विपरीत है। पश्चिम के बहुत से विख्यात दार्शनिक एवं विद्वान महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले में तुच्छ बताते हैं। ये वे लोग हैं जिनकी सोच और रचनाओं ने पश्चिम को प्रभावित किया है। वे कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि पश्चिमी समाज के चिंतक और ख्याति प्राप्त इंसान थे।
पश्चिम में ऐसे भी विद्वान पाए गए हैं जिन्होंने महिला को पशु और पुरुषों के बीच की सृष्टि बताया है। इमैनुएल कांट, जिन जैके रूसो, फेडरिक निश्ते और आर्थर शोपेनहावर सहित पश्चिम के कई विद्वानों, लेखकों और दार्शनिकों की महिलाओं के बारे में बहुत ही घटिया सोच रही है। इमैनुएल कांट तो महिलाओं के लिए नागरिकता के भी पक्षधर नहीं है। उनका ये मानना है कि महिलाओं को पढ़ाई, बराबरी, नौकरी और इसी प्रकार के मूल अधिकारों का कोई हक नहीं है।
महिलाओं के बारे में अपने एक लेख में आर्थर शोपेनहावर लिखते हैं कि महिलाओं के भीतर कविता कहने, संगीत और सुंदर कला की सृष्टि की कोई क्षमता नहीं पाई जाती। अगर वे इस बारे में कोई दावा करें तो वो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। शोपेनहावर ये भी मानते हैं कि शारीरिक और मनोबल की दृष्टि से उनको भारी कामों तथा चिंतन वाले कार्यों के लिए नहीं बनाया गया है। आर्थर शोपेनहावर के अनुसार महिलाओं का काम जीवन में बच्चे पैदा करना और उन्हें पालना है। महिलाओं के बारे में फ्रेडरिक नीचे कहते हैं कि वो कम बुद्धि वाली, लंबे बालों वाली सृष्टि है। पश्चिमी चिंतकों और विद्वानों के ये कथन महिलाओं का खुला अपमान और उनके मानवीय अधिकारों को अनदेखा करने के अर्थ में है।
महिलाओं के बारे में वर्तमान समय में पश्चिम का जो दृष्टिकोण है वह पूंजीवादी व्यवस्था के अस्तित्व में आने के बाद से बना है। इस समय पश्चिम महिला को मनोरंजन या आनंद के हथकंडे के रूप में प्रयोग कर रहा है। अब वह महिलाओं को पूंजी को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल करने लगा है। पश्चिम में जब पूंजीवादी व्यवस्था ने जन्म लिया तो वहां पर सस्ते मजदूरों की जरूरत पड़ी। इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए केवल पुरुषों की मजदूरी पर्याप्त नहीं थी। ऐसे में महिलाओं को अपने घरों से निकलकर कारखानों तक लाने का काम किया गया। इस स्थिति में महिलाओं को तरह तरह के लालच भी दिए गए। उसी दौरान भ्रमित करने वाला एक नारा भी दिया गया, महिला जीवन और आजादी।
इस नारे की आड़ में महिलाओं को सस्ती मजदूरी के लिए प्रेरित किया जाता था। पश्चिम के इस प्रकार के झूठे नारों ने अपना असर दिखाया और महिलाएं इस ओर आकर्षित हुईं। इस प्रकार से पश्चिमी कारखानों में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं काम करने लगी। विशेष बात यह है कि इन नारों के होते हुए अधिक मेहनत करने के बावजूद महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती थी। अधिक धन कमाने की लालच में पश्चिम में बहुत से गलत काम किए। आरंभ में पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को कम मजदूरी पर कारखानों की ओर खींचा गया और बाद में हॉलीवुड ने आग में घी डालने का काम किया और महिलाओं को पूरी तरह से हथकंडे के रूप में प्रयोग करके उसे पूरी दुनिया में बदनाम करने का काम किया।
यूरोप में अश्लीलता को बढ़ावा देने और फिर उसको पूरे विश्व में फैलाने में हॉलीवुड की भूमिका उल्लेखनीय रही है। पश्चिम में महिलाओं को बराबरी के अधिकारों की बात तो बहुत जोर शोर से की जाती है, लेकिन आज भी वहां पर उनके साथ भेदभाव से काम लिया जाता है। कुछ समय पहले तक यूरोप में महिलाएं कार्यालयों में एक निर्धारित स्तर तक ही तरक्की कर सकती थी और ऊपर के पद केवल पुरुषों के लिए ही विशेष होते थे। आज भी यूरोप में कार्यालयों में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, जिसके समाचार सामान्यतः आए दिन अखबारों में देखे जा सकते हैं। उनको दफ्तरों में अपने पुरुष सहयोगियों की ओर से सताया जाता है।
इन कार्यालयों में यौन उत्पीड़न के केस बहुत होते रहते हैं। महिलाओं और पुरुषों के बीच मतभेद और पुरुषों के वर्चस्व का मामला इस समय अमरीकी सेना में बहुत ही स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। वहां पर ये एक गंभीर संकट के रूप में परिवर्तित हो चुका है। ये मामला इतना अधिक बढ़ चुका है कि पिछले कुछ वर्षों से अमरीका में समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक इस समस्या के मूल समाधान में बहुत गंभीर हो गए हैं।
इन सारी बातों को देखते हुए ऐसा कैसे संभव है कि ईरान जैसे देश में जहां पर महिलाएं अपने मूल अधिकारों से वंचित नहीं हैं, पश्चिमी मीडिया हर दिन वहां पर महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के बारे में प्रचार करता रहता है। ईरान में हालिया दिनों में महसा अमीनी नामक एक युवती की मृत्यु देश में लोगों के लिए दुख का कारण बनी। इसी बात को एक मुद्दा बनाकर पश्चिमी संचार माध्यम ईरान के विरुद्ध दुष्प्रचार करते हुए कहने लगे कि ईरान में महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। अब वे महिलाओं के लिए जिस आजादी की बात कर रहे हैं वह पता नहीं कौन सी आजादी है। क्या यह वैसी आजादी है जिसमें महिलाओं को आजादी के नाम पर गुलाम बना लिया जाता है?
ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं ने बहुत प्रगति की है। ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, अर्थव्यवस्था, स्पेस, चिकित्सा और कई अन्य क्षेत्रों में ईरानी महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए देखा जा सकता है। ईरानी महिलाओं ने यह प्रगति चादर या पर्दे के साथ की है। ये वही पर्दा है जिसे पश्चिम प्रगति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बताता है। इस बात को पश्चिम वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान के समाज में महिलाएं अपनी सार्थक भूमिका निभा रही हैं। वे यहाँ पर पश्चिम की भांति मनोरंजन का साधन नहीं है।
ईरान में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, कार्यालयों, मंत्रालयों, प्रयोगशालाओं, उच्च शिक्षा संस्थाओं, स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों आदि जैसे जीवन के हर क्षेत्र में आपको हिजाब या पर्दे में महिलाएं मिल जाएंगी। हालांकि पश्चिमी संचार माध्यमों में इन बातों को सही ढंग से पेश नहीं किया जाता, लेकिन ये एक वास्तविकता है कि ईरान में महिलाओं ने पर्दे में रहकर हर क्षेत्र में प्रगति की है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता का मानना है कि पश्चिम को महिलाओं के बारे में सही जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम की पतशील संस्कृति द्वारा नारी की स्वतंत्रता के बारे में जो कुछ प्रचारित किया जा रहा है वो ये है कि वो पुरुषों के यौन सुख का साधन है। वे कहते हैं कि या यही नारी की स्वतंत्रता है। जो लोग पश्चिमी दुनिया की पथभ्रष्ट संस्कृति में मानवाधिकारों के समर्थन का दावा करते हैं वे वास्तव में महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले हैं। वरिष्ठ नेता कहते हैं कि महिला को इंसान की दृष्टि से देखो तब पता चल जाएगा कि उसका विकास, उसका अधिकार और उसकी स्वतंत्रता क्या है।
वे कहते हैं कि नारी को इसी दृष्टि से देखो कि वह इंसानों का सही प्रशिक्षण करके समाज में सुधार कर सकती है, तब आपको पता चलेगा कि महिलाओं का अधिकार क्या है और उसकी आजादी किसे कहते हैं। वरिष्ठ नेता कहते हैं कि महिला ही परिवार के निर्माण का मुख्य तत्व है। वे कहते हैं कि हालांकि परिवार का गठन महिला और पुरुष के सहयोग से होता है और दोनों ही मिलकर परिवार का संचालन करते हैं, किंतु घर के माहौल को स्नेहपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बनाने में महिला की भूमिका बहुत महत्व रखती है। वरिष्ठ नेता के अनुसार नारी को अगर इस दृष्टि से देखोगे तो पता चलेगा कि वह किस प्रकार से परिपूर्णता तक पहुंचती है और उसके अधिकार क्या है।
ये बात सही है कि हम इस बात का दावा नहीं कर सकते कि इस्लाम ने महिलाओं के लिए जो अधिकार अपने दृष्टिगत रखे हैं वे सारे के सारे इस्लामी समाजों में महिलाओं को मिल चुके हैं, लेकिन ये बात तो पूरे विश्वास के साथ कही जा सकती है कि पश्चिम में महिलाओं को अब तक उनके पूरे अधिकार नहीं मिल पाए हैं। इस्लामी गणतंत्र ईरान में महिलाएं बहुत अच्छे ढंग से अपने परिवार के सदस्यों का प्रशिक्षण करती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ, अब हमें इजाजत दीजिए। ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। श्रोताओं, ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। आप हमसे ईमेल से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।